Vaishnavibho namo namaha. Nauma vadanaya Krishna prema pradayati Krishnaya Krishna chaitanya namne gaurattise namaha. Jai Rupa Sanatan Bhattara Gunat Sri Jiva Gopal Bhatta Dasro Gunat Ethai Gosai Kari Charnabandhan Jaite Vignanas Abhishta Puran Guravi Gaura Chandraya Radhikavai Stadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha Mahabhava Sarupatam Krishna Priya Pariyasi Prama Bhakti Pradevi Radhiketang Namamham Radhi Vrindavanadhise Karunam Ritabahini Kripaya Nijapadabja Dasyam Mayam Pradiyatam Bande Nanda Bradistrinam Padarenum Aviksnasa Jasanghari Kathodgitam Unati Bhuvanatrayam Jaya Sri Krishna Chaitanya Dayal Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Sri Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Bolo Sri Guruji Maharaj ki jai Guru Parampara ki jai Ananta Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai Saparshad Gaur Hari ki jai Gaur Nityananda Prabhu ki jai Jagannath Baladev Subhadra Sudarshan Jiv ki jai Bhakta Vigna Vinashan Kari Nrisingha Dev ki jai Bhakta Raj Prahlad Maharaj ki jai Sarva Abhishta Prata Giriraj Govardhan Jiv ki jai Govinda Gopinath Madan Mohan Jiv ki jai Radha Damodar Jiv ki jai Damodar Pratipalankari Bhakta Vrinda ki jai Jai Vrajavasi Bhakta Vrinda ki jai Madhishwari Praneshwari Srimati Radharani ki jai Jai Vrajadevi Gan ki jai Samavet Gaur Bhakta Vrinda ki jai Gaur Premanandi Hari Hari Srimad Damodara Astakam, Chaitavata Muni, Sanatana Goswami, Guru Varga, Evang, all Bhakta Vrajavasi Vaishnava Vaishnavis. Abhi tak hum logo ne suna, Chaitavata Muni prarthana kar rahe hain. Namo Radhikayai Todiya Priyayai, Namo Ananta Lilaya Devaya Tubham. कहते हैं कि मैं राधा रानी को प्रणाम करता हूँ और तदीय उनके जो प्रिय है या जिस जिसके प्रिय हैं उनके साथ ही वो कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ. तो यहाँ जो फिर कहा नमो अनंत लीला दिव्य तिब्बम, मैं आपके जो अनंत लीला है उसको भी मैं दिव्य है अलौकिक है मैं उसको प्रणाम करता हूँ. तो उसमें ये उन्होंने कंडीशन रख दिया नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम, जो अलौकिक है उसको प्रणाम करता हूँ, लौकिक को नहीं. अर्थात भगवान की लीला एक नैमित्तिक है एक नित्य है. नित्य लीला भगवान के नित्य पार्षदों के साथ परिकारों के साथ जो उनके लीलाएं हैं वो तो नित्य लीला है। और जैसे असुर आदि इन लोगों के साथ जो क्षणकाल के लिए उनका लीलाएं होती है वो नैमित्तिक है, वो नित्य नहीं है। अर्थात इन नैमित्तिक लीलाओं को यदि स्मरण कोई करे, कीर्तन करे, तो उसके द्वारा भगवान के पार्षद या परिकरों के साथ उनका संबंध नहीं हो सकता है। जैसे किसी एक समय पंच पांडव पहुंच गए वनवास में, तो रात को माता कुंती और चारों भाई अर्जुन भी दुर्योधन युधिष्ठिर नकुल सहदेव सो रहे हैं और भीम पहारा दे रहे हैं। उस समय एक दानव राक्षस उसने देखा ओ बड़े सुंदर सुंदर युवक अब बलवान यहाँ पर सो रहे हैं जंगलों में, तो बहुत दिन तक मेरे को ताज़ा भोजन नहीं मिला, पुराने सूखे हुए सड़े हुए गले हुए खाना पड़ता है, किंतु आज ताज़ा भोजन मिल गया। तो वो आक्रमण किया, इधर भीम ने वो उनके साथ संघर्ष शुरू कर दी। देखा यदि मैं यहाँ लड़ता हूँ तो मेरा भाई लोग जग जाएंगे, माँ जग जाएंगे, इसे थोड़ा दूरी में जाकर के उससे खूब लड़ने लगा, किंतु कितना लड़ा उनको हरा नहीं सकते, वो दानव राक्षस बहुत भयानक। और इधर भीम भी कम नहीं, तब उस समय वो दानव राक्षस के बहन, उसका नाम था हिडिंबा, वो भीम को देख करके ऐसे आकर्षित हो गए कि इसको मारना नहीं है, खाना नहीं है, इसको तो मैं अपना जीवन साथी बनाऊंगी, इसको मैं भोग करूंगी। एक दिन खाने से क्या होता है, एक दिन खा लो तो ख़त्म हो जाएगा, रोज़ खाऊंगी, रोज़ भोग करूंगी, इससे मारूंगी नहीं, मारने नहीं दूंगी मेरे भाई को, भाई को भले ही मारवा दूंगी किंतु मैं भीम को नहीं मारने दूंगी। इससे वो माया भी है, तंत्र मंत्र जानती है, बहुत तांत्रिक माया रचा करके पीछे से भीम को दूर दूर से इशारा देने लग गए, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो और मेरे भाई को मार डालो, किंतु मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। अब भीम उसके सहारा लेकर के वो राक्षस को तो मारा उसके भाई को, इतने में और चारों जग गए हैं कि क्या हो रहा है, माँ भी जग गई। तो उस समय वो हिडिंबा आ गई, आकर के बोले मैं आपको चाहती हूँ, आपसे मेरा विवाह करना है, अब मेरे साथ चलो। बोले मेरे बड़े भाई है, छोटे हैं, माँ है, मैं उनके बिना पूछे कैसे कुछ कर सकता हूँ, पर ठीक है मैं माँ के पास जा रही हूँ। वो कुंती के पास आ गई, आकर बोलते हैं माँ मेरे भाई तुम सबको मार के खा जाते और भीम को भी मार देते, किंतु मैंने भीम को अपने पति के रूप में वरण कर लिया, और जब वरण कर लिया तब मैं अपने भाई को मार पर डाला और तुम लोगों को रक्षा कर ली। अब तुम मुझे आदेश दे दो, भीम मेरे पति हो जाए, मेरे साथ चले, मैं उसको लेके जाना चाहती हूँ। अब वो कुंती माता देखती है बड़ा विपद है, क्या करे अब ये वन में, और मेरा पांच बेटे हैं और ये चला जाएगा, किंतु कोई उपाय नहीं। उन्होंने कृष्ण के पास प्रार्थना की, विपत्ति में आपत्ति में संपत्ति में जो प्रभु का स्मरण नहीं करता तो सहारा कौन देगा। जब उनको स्मरण किया, कृष्ण ने बोला हाँ कर दी, कर दो शादी, अभी विदा कर दो, किंतु एक कंडीशन रख देना। तो भीम को आकर के बोल दिया देख जाएगी तो जाएगा तो इसके साथ, किंतु एक कंडीशन रखना कि एक बच्चा हो जाएगा तो मैं चलाऊँगा, फिर नहीं रहूँगा, क्योंकि अभी यदि लड़ाई करोगे तुम जीत नहीं पाओगे। वन में रहना है ये सदा रक्षा करेगी, हाँ। नहीं तो एक राक्षस थोड़े कितने और राक्षस है। ऐसे एक चोर को पाल लो या एक गुंडे को, 10 गुंडा कुछ नहीं करेगा। एक साधारण नियम है। तो भगवान तो जानते हैं नीति, दुर्नीति, सुनीति सभी। बोल दिया ठीक है, तो भीम को बोल दिया। भीम बोला अच्छा ठीक है, तुम्हारे साथ मैं तब तक रहूँगा जब तक तुम्हारे कोई बच्चे नहीं हुए। जैसे बच्चे हो जाएगा मैं चल जाऊँगा। बोले ठीक है राजी। ओ तपस्विनी है, किसकी? माया की। इससे सोचे इनको जाने नहीं दूंगी, ऐसे बांध दूंगी ना ये कभी टच से मस नहीं हो सके। और एक बार प्यार के भूखे दुनिया है, जहाँ किसी को प्यार मिल जाए ना, चाहे कूड़े कबाड़ा होए, बोले कि बहाड़ी की बाडोम, यदि किसी के साथ यदि मन रम गया तो क्या कौन हटा सकता है। बोले क्या करेगा काजी, यदि दोनों है राजी तो कितनी कितनी बातें हैं। तो अब वो तो सोची मैं पक्का पक्की हूँ, मैं इसको लेके छोड़ूंगी। और लेके तो गई। और ये चारों भाई और माँ वन में हैं, वनवास में हैं तो रह रहे हैं। कुछ समय के बाद जब एक पुत्र हुआ घटोत्कच, तब इतना बलवान इतना सुंदर जैसे भीम, उससे भी एक भीम नहीं लाखों भीम एक साथ होके आया ऐसा बच्चा। और वो माया तो उसने सब कुछ सीख लिया। तो भीम वो होने के बाद चला आया, हाँ, माँ के साथ आके भाइयों के साथ मिल गए। रख नहीं सके क्योंकि पति के साथ तब तक संबंध रहता है जब तक बच्चे नहीं होते। जब बच्चे होते हैं आधा प्रेम बच्चे में चला जाता है, आधा रह जाता है, तो आधा तो बाधा है, तो वो निकल गया। भीम निकल करके आ तो गया। अब वो घटोत्कच बड़ा हो गया, वो क्या कहती है, हिडिंबा देख मैं माँ की उपासना करती हूँ और आज अष्टमी है, माँ के निकट बलि चढ़ाना है। घटोत्कच तुम जाके एक सुंदर अच्छा मस्त युवक को पकड़ के लाओ, माँ के सामने बोली दूंगी। ये वन में भटकते भटकते घूमते घामते घूमते घामते एक ब्राह्मण को बालक को पकड़ लिया। ओ जैसे बकरा भेड़ उठाते हैं ना, तो इतना ताकत है, बलवान है, एक पैर यहाँ एक पैर हिमालय में, और भीम जैसे उड़ते हैं उससे ज़्यादा इनमें ताकत है। वो ब्राह्मण के बालक को पकड़ के ब्राह्मण ब्राह्मणी के पास से लेके चल दी। वो ब्राह्मण ही रो रहा है, ब्राह्मण रो रहा है, हाँ बालक रो रहा है, किंतु ये तो लेके चल दी। इतने में भीम रास्ते में मिल गया। बोले आप लोग क्यों रो रहे हैं? तो बोले ये राक्षस असुर हमारे बालक को लेके जा रहा है। किससे ले जा रहा है पता नहीं, खाएगा कि क्या मारेगा क्या करेगा। उस समय भीम ने बोला ये रुको। बोले क्यों? वो इसको छोड़ दो। क्यों छोड़े? मेरे माँ ने आदेश दिया है, आज अष्टमी है महाअष्टमी, आज एक नरबलि देना है, इसको आज माँ के सामने बलिदान करेंगे। बोले इसको छोड़ दो, मुझे ले चल, मेरे को बलिदान, मेरे जैसे बलवान और सुंदर कोई मिलेगा? और ठीक है चलो, छोड़ दिया। ब्राह्मण ब्राह्मण बड़े खुश हो गए, बहुत उपकार किया हमारा। इनको लेके चला गया। जब चला गया हिडिंबा के पास, तो हिडिंबा कहते किसको पकड़ के लाया? क्यों? ये सुंदर है, बलवान है, पहलवान है, बड़े मस्त है, और इसको बलि देने से तो ज़्यादा माँ प्रसन्न होंगे ना। बोले अरे ये तेरे बाप है। बोले अच्छा, तुमने तो कुछ बोला नहीं मुझे, और मैंने कौन सा मेरा बाप है, कौन क्या है, मैं तुमको मालूम नहीं, मैं तुमको ही जानती हूँ और किसी को नहीं। तो उनको प्रणाम वनाम किया। बोला अच्छा, यदि कोई काम का मैं आपका बालक हूँ, यदि ये कभी याद करोगे तो मैं तुरंत हाजिर हो जाऊँगा। तो भीम वहाँ से चला आया और बोले, ऐसा नरबलि मत दो, अपने को बलि दे दो, उपहार देना है तो अपने को दे दो, वो अच्छा है, दूसरे को क्यों बलि दो, हत्यारा क्यों बनो। तो भीम समझा समझा करके तो चला आया। उनको वहाँ बहुत आत्मज्ञान की बातें हैं, बहुत सुंदर आत्मज्ञान दिया जिससे कि वो सदा के लिए हाँ बरी हो गई। तो कहते ये सब चीज़ दानव मानव राक्षस असुर हाँ ताल बेताल गंधर्व किन्नर यक्ष हाँ इन लोगों के साथ जो भक्तों के भगवान के आदान प्रदान लीलाएँ होती है, ये नित्य नहीं है, ये नैमित्तिक है और इसके द्वारा कल्याण कभी नहीं हो सकता है। और कोई सुने भी है आ कर्णमंडल शयन आपत्तमनोरम थोड़ा चटक पटक अच्छा लगता है, किंतु ये नित्य भगवान के साथ संबंध या भगवान के प्रति विधान के लिए ये सब नहीं है। इससे उन्होंने प्रणाम किया, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम, अर्थात आपके जो दिव्य अलौकिक लीलाएँ हैं परिकरों के साथ, वही लीला जगत के कल्याणकारी है, आत्म ज्ञान को देने वाला है और सदा संबंध को बनाने वाला है। और जो किसी को मार दिया थोड़ी देर के लिए, कभी अगासुर को मार दिया, कभी बकासुर को मार दिया, तो कोई कहते एक सांप मार दिया, एक चिड़िया मार दिया, उससे होता क्या है, एक मक्खी मच्छर मारने से क्या होता है, ये भगवान का नित्य लीला नहीं है। और इन लोगों के इन लीलाओं का श्रवण कीर्तन करने से हैं वो नित्य परिकरों के साथ संबंध नहीं होगा और भगवान के प्रतिविधान भी नहीं है। तो ये क्या है, पुतना आई, पुतना को जो धातृउचित मातृउचित गति दे दी, इस बात को सुनकर के सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं, ओहो एक पुतना ने माँ का बेस बना करके आ करके वो क्या किया है, अपने स्तन को खोल लिया है, और बोले तू बूढ़ी है, तेरे स्तन में दूध नहीं है, देख मेरा कितना बड़ा स्तन है, कितना दूध भरा हुआ है, और ये बालक मेरा ही है, तेरा बालक नहीं है, कपट करके उनके मुंह में ठूस करके अपना स्तन को भर दी। किंतु कपटता किया, माँ का बेस बनाया, तो भगवान कहते हैं अरे कैसे न कैसे आ तो गई मेरे पास और मेरे को जहर देने के लिए भी तेरा इच्छा है, किंतु उस स्तनों में लगा करके तूने मेरे को पिला दिया, ठीक है अब तेरे कपटता को दूर करके, बुद्धि को दूर करके, शुद्ध करके मैं माँ के जैसे ही नित्यकाल सेवा का अधिकार तेरे को मैं देता हूँ। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं, जो ये पुतना कपट है, वो कपट करके आकर के साधन नहीं, भजन नहीं, तपस्या नहीं, त्याग नहीं, कुछ नहीं, वो आकर के भगवान के मुंह में स्तन दे दिया, और वो भी है कोई पवित्र चीज़ नहीं है, अपवित्र वस्तु है, जहर है, फिर भगवान ने मातृजीत गति दी, चिरकाल सेवा अधिकार दे दी। और जो जसोदा माता नित्यकाल स्तनपान करा रही है, इतनी सेवा कर रही है, तो उनको क्या मिलेगा, उनको क्या गति देंगे। भगवान के पास पूछा सुखदेव गोस्वामी के पास, सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, कहते हैं यदि जसोदा माता का कोई स्मरण भी कर लिया, ओ नित्य सेवा अधिकार, नित्य ओ वासुर जो प्रेम है उसको प्राप्त होगा, उसको वो प्रेम नहीं है, एक घर में नौकर चाकर को पैसा देके रखा जाता है, तो उसका पैसे से प्रेम है, मालिक से प्रेम नहीं है, काम से उसका प्रेम नहीं है। तो ऐसे ही जो लोग भगवान के साथ प्रेम संबंध से जुड़े हुए हैं, कैसे एक घर का एक बच्चा है, काम धाम कुछ नहीं करता, तोड़फोड़ करता है, उल्टा पुल्टा नष्ट करता है, और नौकर 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा 24 घंटा भी काम करता है, किंतु वो बालक कुछ नहीं करता है फिर भी जितना प्रेम उसका है उस और जिद्दी करता है, कुछ बर्बाद कर देता है, फिर भी वो नौकर के प्रति वो प्रेम नहीं होगा जो अपने संतान के प्रति होगा। तो ये ममता है और एक नियम है, विधि विधान है। नियम श्रृंखला और प्रेम संबंध एक नहीं हो सकता। इसलिए भगवान के हृदय कहाँ है? वो प्रेमी भक्तों के पास है। वो लोग कपट करके आया, अच्छा फल मिल गया, किंतु प्रभु उनके उस बातों से रिझे नहीं, सदा उनके बने नहीं, उनको सुजोग दिया आगे उन्नति के लिए, कल्याण के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, किंतु भगवान उसमें प्रसन्न नहीं। तो ऐसी जो नैमित्तिक लीला है, यह अघासुर बकासुर तिनावर्त कालिय, ये जो सकटासुर भगवान की लीला है, ये दिव्य अलौकिक नहीं है। इसके लिए प्रणाम नहीं कर रहे हैं। हाँ, भगवान क्या कहते हैं कि गोवर्धन में जब कृष्ण गोचारण में आए, आज सुबह सुबह तड़ के आ गए, बिल्कुल आज नाश्ता भी नहीं किया, सो के उठा, सकालो मित्रों को इतना हल्ला मचाने लग गए, शोर मचाने लग गए, अरे लाला जल्दी निकल, धूप निकल आएगा और खरा धूप है, गर्मी इतनी है और तेरे को जाना ही जाना है, तो जल्दी चल सुबह। और उनको एकदम ब्रह्म मुहूर्त में जसोदा माता बोले, अरे कहाँ निकल रहा है? बोले खिड़क तक जा रहा हूँ, गाय को देख रहा हूँ, क्योंकि गर्मी के दिन है, पानी वानी पिला के स्नान करा करके और मैं आता हूँ, दूध दूध काढ़ के आता हूँ। ये कहा तो निकल गए। क्यों? सखा लोग पियर नर्म सखा, सूरज सखा, पृष्ठ सखा, प्राण सखा और सखा बहुत प्रकार के हैं। तो वो जो पियर नर्म सखा है, वो लोग जानते हैं प्रभु के हृदय को। इससे आज सुबह बिल्कुल ब्राह्मण मुहूर्त में तड़के उठा के ले आए। और गाय तो पहले से तैयार है, वो और ज़्यादा प्रेमी है, उनको बोलने की भी ज़रूरत नहीं, उनको रास्ता भी मालूम है आज किधर जाना है, उनको इशारा भी देने की ज़रूरत नहीं, और उससे भी ज़्यादा तेज है वो बिजार सांड लोग, और उससे भी तेज है बछड़े बछड़िया, उनको इतना अनुभव है आज प्रभु किधर जाए, वो इधर उधर रास्ता में नहीं जाएंगे, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं। कृष्ण तो अपने बंसी वादन करते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, सखाओं के साथ मस्ती करते हुए जा रहे हैं, और गाय लोग रास्ता साफ करते हुए खुरों खुरों से धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर कांटा कूस हटा करके चले जा रहे हैं। और सांड लोग बड़े बड़े पहलवान हैं, वो तो मस्त दंगल करते हुए जाते हैं, लड़ते भिड़ते हुए जिससे कि आगे कोई आक्रमण भी न कर सके। तब जल्दी जल्दी करके आज गोवर्धन के तरटी में आ गए। आते ही देखा ये लोग तो गाय लोग पानी पी लिया, घास खा लिया, विश्राम कर रहे हैं, सखा लोग मानसिक में उछल कूद कर नहाने लग गए, क्योंकि बालकों का पानी देखने से बड़ा मस्ती आता है, और उछलना कूदना, और क्यों अभी स्नान करने के बाद ही तुरंत क्या है, ओ कितने फल लगे हुए हैं, गर्मी के दिन हैं, फल बिछे हुए हैं, शहद मधु क्या नहीं है। तो कृष्ण वन में प्रवेश किया, जब प्रवेश किया क्या देखा, पहले हम लोगों ने सुना एक जगह का नाम है कुसुम सरोवर, तो कुसुम का मतलब है फूल, ये नहीं कि केवल कुसुम सरोवर में फूलों का बागान है, पूरा गोवर्धन के चारों तरफ में तरटी में सुंदर सुंदर फूलों का फलों का उद्यान बागान है, जिसमें कि झरना है, कंदमूल है। तो कृष्ण जैसे उद्यान में बागान में प्रवेश किया, देखा फूल खिले हुए हैं और कम से कम लाखों करोड़ों छोटी छोटी किशोरियाँ
फूलों को उठा रहे हैं, फूल चुन रहे हैं, कृष्ण देखकर बिगड़ गया। मेरा बगान है बिना बोले आज सुबह सुबह ये ब्राह्म मूर्ति चोरी करने के लिए चोटी ना गई सबरी है, फूल उठाकर मथुरा बाजार में बेचती है, हैं पैसा कमाती है, मेरा बगान है, हैं मेरे बाप दादा ने कितना सुंदर कष्ट करके ये सुंदर बगान सजाया और तुम चोटिन सारे फूलों को उठा लेना शुरू कर दी और कहाँ ले जा रही है। किसे चिल्लाने लग गए, साथ में मधुमंगल भी था और तो कृष्ण अर्जुन लवंग सुभद्र भद्रसेन हैं, अच्छे अच्छे जो प्रिय नर्म सखा है साथ में है, ये सुनकर के वो भी बिगड़ गई। बोले कृष्ण बोले क्यों क्यों फूल अट रही, बोला हम पशुपति की पूजा करेंगे। अच्छा पशुपति जो मैं हूँ तो मेरी पूजा करोगे और ऐसे बिना आदेश का फूल उठा लिया, नहीं बागान में क्यों प्रवेश किया। वो रोज शोर मचाने लग गए, रोज दिन गायों को लेकर के और बछड़ों को लेकर के दुनिया ला करके हमारे बागान नष्ट करते रोज दिन, आज तक हमने जवाब नहीं दी, आज तो हाथों नाथों पकड़ लिया घुस गया हमारे बागान में। बोले तुम्हारा बागान है, बोले मेरे बाप का है। बोले तुम्हारे पास कोई वो है लिखा पड़ी है, ये सब संपत्ति वृंदा देवी क्या है, वृंदा देवी का वृंदावन है, उनका बगान है, उनका संपत्ति है। तो बोले वृंदा मेरा पत्नी है। बोला अच्छा है, काले कोलूठे नक्शेबाज नक्शेबाज दिखा रहा है, तेरे को कौन पूछता है ब्रज में, तेरे शकल कोई देखता है, है? वृंदा को बुलाया, ए वृंदा बोलो तुमने इससे कोई रिश्ता किया, कभी इसका नज़र मिलाया सड़क शकल देखा इसका। बोले कभी नहीं, इसको इसको कौन देखता है, इसको देखने से तो आँख भी काला हो जाता है और मेला धूल जम जाता है कि काले कोलूटों को देखने से हैं आँख के पर्दा बंद हो जाता है, इसको कौन देखता है, तो ये संपत्ति मैंने सब कुछ राधा रानी को दे दिया, राधा रानी का बन है, पकड़ लो इसको और पकड़ लो इसके साथ वाले को, चोटी पकड़कर बांध दो पेड़ में हैं। ये रोज दिन वहाँ दानघाटी में खड़ा रहता है, सुबह तड़के आके भिक्षा मांगता है, दे दो दे दो दे दो, दान दो टैक्स दो। अरे हैं तेरे बाप का घर में खाना नहीं है या इतना गरीब है, रोज दिन भिक्षा मांगता है हाथ पसार करके, शर्म नहीं आती है, और हमसे लड़ने आया सुबह सुबह हमारे बागान में आकर के हमें डांट रहे हैं। हम फूलों को कैसे सींचते हैं कैसे बनाते हैं, वृंदा देवी दिन भर रात भर कितना सेवा करती है, और यहाँ आकर दादागिरी करने लग गया, खूब झगड़ा शुरू हो गया। उस समय मधुमंगल कहते हैं अरे भाई कोई बात नहीं है, देखो सुबह सुबह तड़के तड़के कुछ खाने पीने को दे दो, समस्या समाधान हो जाए, झगड़ा चलेगी नहीं आगे, तुम खाली पीली झगड़ा करती हो, भूखे को भोजन देना सबसे बड़ा धर्म है। आज सुबह सुबह हम इतने दूर से चल चल करके आए, अतिथि आ गया तो घर में पहले पूछना चाहिए हैं भैया पानी पी लो बैठ जाओ खाना खा लो, ये तो नहीं और लड़ना शुरू कर दी, ये औरतों का धर्म है। औरतें कभी भी बिना डांट खाए हैं वो दबती नहीं है, उसको तो डांटने वाला कोई ना कोई चाहिए। बस लड़ाई शुरू हो गया, मधुमंगल हैं बोलते लड्डू दो कुछ दो खाने को दो, बस बोला अब देती हूँ लड्डू हैं भागा पकड़ने के लिए, और पकड़ करके अभी अभी अच्छा सजा दूंगी हैं, किसके संपत्ति के ऊपर तुम्हारा अधिकार है छुप करते हो लड़ाई करते हो। तो कहते हैं ये जो परिकारों के साथ लीलाएं हैं ये दिव्य है, ये अलौकिक है, इसके स्मरण कीर्तन के द्वारा हाँ क्या होगा, भगवान के साथ नित्य संबंध प्राप्त होगा और भगवान के प्रेमों के पक्ष में जाएंगे हैं। अब इतना सुनने के बाद में मधुमंगल कहता है अब मैं इसके साथ नहीं दूंगा, ये सब समय आक्रमण करता है, लड़ता है। मैं तो आप लोगों के शरण में हूँ, आप मुझे भोजन दे दो, मैं अभी आपके पक्ष में रहूँगा सदा। बोले दल बदल करने वाले को कभी भी हैं अपनाना नहीं चाहिए। आज इस दल में है, काल इस दल में है, फिर परसों भग जाएगा, भगोड़े हैं है। तो वहाँ वृंदा देवी विराजमान है। वृंदा देवी कहती है यह वृंदावन सब श्रीमती राधारानी का है। तुम लोग आज दासखत लिख दो और कि हम आज से ब्रज के हैं राजा के दासानुदास बनने के लिए हम प्रार्थी हैं, तब हम तुम लोगों के लिए गोचरण करने देंगे, वन में आने देंगे, किंतु फूलों के बागान में नहीं। ये फूल हम पशुपति की सेवा के लिए रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। उस समय श्रीमती राधारानी दूर से इन कलहों को सुन रही है और नज़दीक नहीं आई। ललिता कहती है आगे मत जाना है। विशाखा कहती है भूल करके भी उनको मत देखना, किंतु कृष्ण ने देखा ये कलह मिटेगा नहीं। गोवर्धन के तरटी के ऊपर नहीं, वो ऊपर चढ़ गए, जा करके चुपचाप बंशीवादन शुरू कर दी। बस पेड़ों के रस झरने लग गया, पाखी चिड़िया झूमने लग गई और हिरने टकटक लगाकर देख रहे हैं। गाय के स्तन में से दूध हैं और बछड़े नहीं पी रहे हैं, मुंह से निकल रहे हैं और उस पानियों में वो लहर आ गया, उफन आ गया हैं। झरना नीचे जाना छोड़ करके और ऊपर की तरफ चलने लग गई। उधर क्या हो रहा है, सखियों के हृदय हैं और नहला दहला दी, अर्थात हैं अब तितर बितर हो गया। तो अब कहाँ गए झगड़ा, सब मिट गया, शांति हो गया। मतलब कृष्ण के बंसी ध्वनि को श्रवण मात्र ही हैं हृदय में जाकर के ये अमृत और सरोवर में अवगाहन करा दिया, उसमें से निकलने का कोई उपाय है नहीं। तो कहते हैं ये जो प्रेमामृत लहरी है ये केवल मात्र दिव्य अलौकिक लीलाओं में ही संभव है। दिव्य अर्थात भगवत परिकरों के साथ जो भगवान का लीला है ये मनोमुग्धकारी मनोहारी हैं और भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। और जो असुर मारण आदि वो कविराज गोस्वामी लिखते हैं ये जो लीलाएँ हैं ये कृष्ण नहीं करते, विष्णु द्वारा कृष्ण करें असुर संहारे। जितना असुर आदि मारण लीला है वो कृष्ण नहीं करते, उनके अंदर में जो विष्णु है और अवतारावली है उनके द्वारा ही वो कार्य संपन्न होता है। भगवान इन चीज़ों को कभी देखते भी नहीं है और न सुनते हैं। हैं उस समय वर्णन देते हैं हैं कालिया अपने फेटों में लपटों में कृष्ण को ले लिया और कृष्ण कम एकदम निश्चेष्ट होकर के उनके फेटे में पड़े हुए हैं और कालिया क्या कर रहे हैं, उनके हजारों फनों से मर्मस्थान में दंशन कर रहे हैं और खूनों की धार बह रहा है। तो कालिया सोचते हैं कि खून को मैं पी जाऊं सबरी और उनको बिल्कुल ही ख़त्म कर दूं, क्योंकि नागराज का यही नियम है नागों का हैं, गले में नरम स्थानों में वो दंशन करेंगे और खून निकलेगा तो वो खून को पिएंगे। तो कृष्ण को लपटे में बांध ली। उस समय ब्रज में बड़ा उत्पात मच गया, इतना चहल पहल हो गया, अंदर आ गया, खूनों की वर्षा होने लग गया, लोमड़ी बोलने लग गई, कौआ उड़ने लग गया। नंदबाबा बोले आज कुछ अपशकुन हो रहा है, सबरे आकाश में उड़ते हुए आ रहे हैं और ब्रजवासी जन उस दिन बलदेव प्रभु नहीं आए थे, उनका जन्मदिन था, वो कृष्ण को माना किया था, बोले मैं अभी जा रहा हूँ थोड़ी देर अभी आ जाऊँगा, किंतु आए नहीं। अब सब लोग भाग भाग आए तो कालिया के किनारे ह्रद के किनारे देखा गाय बछड़े सब तो एकदम मरे हुए पड़े हैं, कृष्ण सांपों के लपटे में है। ये देख करके सबका प्राण उड़ गया। जसोदा माता आनंद बाबा सभी कालिया ह्रद में उछलने के लिए और अपना जीवन समाप्त करने के लिए सब तैयार। बलदेव प्रभु बोले नहीं रुको, अभी देखो तो क्या होता है। बड़े मुश्किल से उनको रोक ली। उस समय गोपियाँ भी वहाँ थी, किशोरियाँ सभी आई। उन लोगों ने क्या देखा कि कालिया कैसे सौभाग्यवान है, कृष्ण को यदि हम लोग गले मिलते हैं आमने सामने मिल सकते हैं, सर्वत्र तो हम पकड़ नहीं सकते। और देखो कालिया ने क्या किया, आगे पीछे चारों तरफ अपने लपटों में लेकर के कैसे आलिंगन कर रहे हैं, और देखो हजार फने से चुम्बन कर रहे हैं, कैसा उसका भाग्य है। हमारा तो कभी भाग्य तो होता ही नहीं है उनको स्पर्श करने की। आज स्पर्श भी किया तो चुम्बन किया तो एक ही जगह में, और ये कैसे सौभाग्यवान है उसकी सराहना कर रहे हैं। जब कृष्ण फेटे के अंदर से नपटे के अंदर से बाहर आ गया, आकर के जब फन को नृत्य करने लग गए, एक फन नहीं कितो फन है, और नाचते नाचते एक को तोड़ डालते हैं, फिर वो खून की उल्टी करने लग जाता है, फिर दूसरे फन में। और गोपियाँ क्या कर रही है, ओहो हमने कितनी कोशिश की, कितने चेष्टाएँ की उनके चरण कमलों को हमारे वक्षस्थल में हृदय में धारण करें, किंतु कहते हैं तुम्हारा हृदय बड़े कठिन है और तुम्हारे ताप से भरे हुए हैं, हमारे मस्तक को रखे नहीं रखने दिया। और आज देखो कालिया के कैसे सौभाग्य है, कालिया कैसे भाग्यशाली है, उनके मस्तक पर भगवान के चरण बिना मांगे और ऐसे नृत्य कर रहे हैं। रास में भी ऐसा नृत्य नहीं किया है? कब कौन फन के ऊपर में नृत्य कर रहे हैं, कौन सा ऊपर आ गया उसी के ऊपर भगवान चढ़ जाते हैं। तो ऐसे जो नित्य प्राण प्रिय प्रेष्ठ सखियाँ ब्रजदेवियाँ चिंतन कर रही है, उसको कौन देख रहे हैं, प्रभुदानंद सरस्वतीपाद। इससे कालिया रथ को छोड़ करके वो कहीं जाते नहीं थे, कभी कामवन जाते कभी और अन्यत्र, किंतु यहाँ ही उनका चिरकाल समाधि है और वहाँ ही उनका भजन कुटीर है। क्यों, वो देखते हैं गोपियाँ सराहना कर रही है। हाँ, आखिरी में क्या हुआ, जब कालिया को विदा कर दी, जीव गोस्वामी कहते हैं विदा नहीं की, ब्रज में कोई आया उसको ब्रज से विदा नहीं करते, उनको नाकों में नौत देकर नकेल देकर के रस्सी देके कदमों के पेड़ के साथ बांध दिया। बोलते हैं यदि सैर करना है नदियों में, कभी समुद्र में जाना है तो नौका जहाज की जरूरत नहीं, एक सर पर चढ़ जाओ बैठ जाओ, ये लेके घुमा के ले आएगा, और हाथ में मेरा रस्सी है भागेगा कहाँ है। कभी सखाओं को लेकर सैर करने जाते हैं, कभी सखियों को लेकर सैर करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, और जमुना होकर के एकदम गंगा सागर समुद्र तक घूमे आते हैं। कहते ऐसे जो कालिया हैं सौभाग्यवान हैं, क्योंकि थोड़ी देर में क्या हुआ, शाम हो गया, ये लोग आज नंद गाँव गए नहीं, ब्रज में लौट के गए नहीं, और रात को कंस के चरण ने देखा, अरे कालिया को भी परास्त करके भगा दिया, अपना लिया, चलो ये सब इकट्ठे हो गए यहाँ, सारे ब्रज आग लगा दो हैं। तो एक तो सूखे लकड़ी मुंजा और जितने बिटोरा, ये क्या कहते हैं ब्रज में कांडों का ना बिटोरा बनाते हैं, और बना बना घर बना कर रखते हैं, क्योंकि बरसात के दिनों में सूखे कांडा लकड़ी कहाँ से मिलेगा। तो अब बिटोरा सब में आग लगा दी कंस के चरण ने, अब आग लगा दिया तो चारों तरफ आग है जाएगा, सब लोग कृष्ण को पुकारने लग गए और कृष्ण को आकर पकड़ लिया। कालिया ने दिन में पकड़ा और ब्रजदेवियों ने रात को पकड़ लिया, आग ऐसा लपटा है, तो कहते आग नहीं है ये हमारे लिए, अंदर में जो ताप था ना सबने निकल आया, कृष्ण के मिलन के लिए बहाना बना दिया। अच्छा तो हुआ, कम से कम अब तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, अब तो किसी संदेह नहीं, कोई किसी के साथ ये नहीं, विपदा के समय में कोई किसी को पूछता नहीं, कोई कुछ ब्लेम और क्लेम नहीं करता। वो आज कितना भाग्य है, आज कृष्ण को चारों तरफ से पकड़ लिया। कृष्ण बोले ठीक है, अच्छा है, लीला शक्ति जोगमाया देवी ने कितनी सुंदर व्यवस्था की, ठीक है, कृष्ण प्रभु एक स्वरूप में, लाखों स्वरूप में, लाखों करोड़ों के साथ एक साथ में मिले हैं, सबका मनोरथ पूरा किया। दिन भर ताप रहा और रात को ताप प्रज्वलित हो गया, किंतु मिलन में सब शांत हो गया, अर्थात वो आग बुझ गई। आग वो ताप शांत नहीं होते, किंतु एकदम मिलन में शांत हो गया। तो कहते हैं यदि नित्य पृष्ठ प्रियजनों के साथ यदि उनका कुछ लीलाएँ चलता है तो जगत कल्याणकारी हैं, मंगल के भी मंगल स्वरूप है। और यदि असुर मारण आदि नैमित्तिक लीला है, क्षणस्थायी है थोड़ी देर के लिए, किंतु वो संपूर्ण रूप से कल्याणकारी नहीं है, वो नैमित्तिक है, फिर भी अच्छा है, किंतु वो ममता या निबंधन या प्रेम निबंधन नहीं है, वो केवल मात्र आकर्षणीय है, चित्त को आकर्षण करेगा, भगवान ने ऐसा किया ऐसा किया। किंतु वो चीज़ साधारण जगत के लिए उपकारी है, नित्य लीला के प्रति उनका कोई परिचय नहीं है और न कोई लोभ है। तो ग्रंथकार कहते मुझे नैमित्तिक लीला से कोई मतलब नहीं है, जो अनंत लीला है उसमें भी जो दिव्य देवायतुभ्यम, जो अनंत लीला में सबसे दिव्य है अलौकिक है, मैं उस लीला के साथ आपको मैं प्रणाम करता हूँ। वो लीलाई भगवान को चिरकाल के लिए बांध सकते हैं। कहते हैं उसमें भी रसमय जो राजबिहारी हैं, जो बिहार करने वाले सबके हृदय पटल में, और तो वो राजबिहारी होगा बोलते हैं नहीं, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में भी तो विराजमान है, तो वो तो राजबिहारी नहीं है, वो परमात्मा कहते हैं। ऐसे यदि कोई कहे भगवान तो सबके हृदय में परमात्मा के रूप विराजमान है, हाँ कहते हैं नहीं, भगवान के हृदय में कितने लोगों के लिए जगह है वो विचार नहीं है। सब लोग कहते हैं मैंने गुरु के पास गया, नाम ले ली, दीक्षा ले ली, मंत्र ले ली, किंतु गुरु ने किसको अपनाया, को कौन व्यक्ति ऐसे हैं इतने प्रेम सेवा किया प्रीतिपूर्वक कि उनके हृदय को भी जीत लिया, अर्थात उनके हृदय में भी उनके लिए जगह हो गया, तो गुरु सेवक है, आने तो काहे कि गुरु सेवक है। ऐसे भगवान कहते हैं कौन प्रेमी है, प्रेम के द्वारा मेरे को भी रिज लिया, जीत लिया और मेरे हृदय में भी स्थान बना लिया, हाँ वो तो मेरे हैं, मेरे को अपना है, और नहीं तो अरे गहरे सरे कितने सारे हैं कहने वाले, तिलकधारी, मालाधारी, नामधारी, जपधारी, हैं चोटी वाले बाबा जी कितने सारे हैं, किंतु चमड़ी और दमड़ी में फंसे हुए हैं। इसको अतिक्रम करके भगवान को अपनाया या उनको प्रेम से रिझाया और उनके हृदय में जगह हो गया तो वो प्रेमी कहलाते हैं। इस प्रेम की जरूरत है, हैं और परसों रोज हम लोग कथा में कह रहे थे, सभी गुरु का आदेश मानते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, तो एक कार्तिक के महीने में परिक्रमा चल रहा है, तो किस सेवक ने बोला मैं गुरु की कितने सेवा करता हूँ, आदेश पालन करता हूँ, गुरु मुझसे बहुत प्रसन्न है। तो किसी ने पूछा कैसे प्रसन्न है, और गुरु ने बोला तुम दूध का खीर बनाओ, दूध पिलाओ, भोग लगाओ, फल लाओ, ये करो वो करो। तो उसने पूछा भाई बहुत अच्छी बात है, गुरु का आदेश तुम पालन करते हो, किंतु गुरु तो साक्षात विराजमान है, उनको कभी एक फल खिलाया, इतना सा दूध पिलाया कभी, तो नहीं, उनका आदेश ही सब कुछ है। बोले बढ़िया है, उनको खुटा में टांग के बांध दो, लटका दो, उनको कुछ दो नहीं, उनका आदेश है, निर्देश पालन करो, वाह बहुत अच्छे प्रेमी भक्त हैं। तो हम लोग ऐसे प्रेमी और नेमी भक्त हैं, आज्ञा पालन करने वाले, चाहे वो मरे चाहे जिए उनसे कोई मतलब नहीं, उनका आज्ञा पालन कर। उन्होंने बोला मेरे को पीट दे, हाँ ऐसे पीटेंगे उन्होंने खत्म ही कर देंगे। तो गुरु सेवा है। ऐसे भगवान के भजन कैसे है, हैं? भगवान के प्रतिविधान कैसे होता है, ये उनके प्रेमियों से सीखना है, उनका अनुगत्य करना है। सीखने के बाद में हैं स्वतंत्र होकर के फिर सेवा कर सकेंगे, बोले ये जन्म जन्मांतर कभी नहीं हो सकता। स्वतंत्रता जहाँ आई तो हम गए, जहाँ से खुदा के कसम लौटना नहीं होगा। अनुगत्य में सेवा जो है अनुकूल्यन कृष्ण शरणम भक्ति उत्तमा, उत्तमा भक्ति उसे कहते हैं जो अनुकूल्यन अनुकूल अनुसरण करना है। तो अनुकूल का मतलब है अनुगत्य, अनुकूल का मतलब है निरंतर, अनुकूल का मतलब है उनके रुचिकर। तो ये हम कर रहे हैं उनके प्रिय है कि नहीं, रुचिकर है कि नहीं। आज जो प्रिय व्यक्ति है वो जानते क्या रुचिकर है। इससे ग्रंथकार यहाँ कहते हैं यदि अधिकार प्राप्त करना है भगवान के हृदय में, यदि किसी के लिए जगह हो, उन्होंने यदि किसी को स्मरण किया तभी तो वो प्रेमियों को बिना स्मरण के रह नहीं सकते, और वो प्रेमी भी उनके बिना नहीं रह सकते। इसलिए ऐसे प्रेमी हम कैसे बने, नहीं तो जीवन बर्बाद करने से कोई लाभ नहीं है। यार चोला पहन लिया, चामड़ी और दमड़ी के ऊपर सज सजाया, तिलक रचा दिया या खूब दिखावा कर दिया, किंतु हृदय महारा महाराज हमारा कोई और है। ये हृदय के कोने में इतना भी जगह नहीं है। एक कहते हैं वृत्यासुर, अजात बक्षैव मातरम खगा स्तन्याम यथा वसतरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियव भूषितम भूषन्ना मनो अरविंदाक्षे दिदीक्षते ताम। कहते छोटे छोटे चिड़िया अंडा से अभी अभी जन्म लिया तो उसको आँख भी नहीं है, अभी चोंच है, पर भी नहीं है, घोसला में पड़ा है, कोई आवाज़ आता है सोचते मेरे माँ गए, चिक 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 कर मुँह खोल के बैठ जाता है। भले सांप आ गए खाने के लिए तो उनको तो पता नहीं, और खा भी जाए तो कोई मत कर नहीं सकते। तो माँ के लिए उसका प्रेम है, किंतु किस लिए है, मुझे भोजन देगी, और भोजन कैसे लाती है, वो अपने चोंचों से नरम करके पका करके तो उसके मुँह में डाल देते हैं, तो उसका प्रेम इतना ही है। और जब पर हो जाता है ना तो माँ के साथ रहता है, खाने के लिए सोचते हैं फुर उड़ जाता है। तो ऐसे ही लोग बड़ा प्रेम दिखाते हैं, भगवान की सेवा पूजा करता है। और जहाँ प्रभुता आई तो प्रभुता भाई मत गाहे नहीं, बस हो गया काम, मैं तो अब महाराज हो गया हूँ, मैं अब गुरु हो गया हूँ। गुरु घंटाल है, शिष्य चंडाल है, मैं तो हो गया कुछ किस छिन की होनू। ऐसे नहीं होता, ये प्रेम नहीं है। अब फिर क्या कहा, बस तरा खुदरता, सुबह से बछड़े बंधे हुए हैं, शाम हो गया माँ आई नहीं, जैसे शाम को आई और वो चिल्ला रही है डकार कर रही है, आई तो दूध पीने के लिए माँ के पास घुस गई, दूध पी लिया, फिर बड़ा हो गया तो कोई मतलब नहीं। फिर कहते वृत्यासुर ऐसा नहीं, प्रियम प्रियव भूषितम विषन्ना, जैसे प्रिया प्रियतम के लिए सोचती है कहाँ है, दूर प्रवास में गए कब आएंगे, खाना नहीं पीना नहीं पहनना नहीं, छटपटाती है, कहते ऐसा प्रेम मेरा कभी होगा। और आगे और कहते हैं मनो अरविंदाक्षे दिदीक्षतेताम, वो भी प्रिया प्रियतम से मिलने के बाद में भूल भी सकता है या दूर रह भी सकता है, किंतु हमारा ऐसा नहीं हो कि हैं कि मन की आंखों से भी मैं उन्हीं को देखूं और आत्मा में मैं उनको समा के रखूं। एक वृत्यासुर यदि ऐसा कह सकता है तो हमारा साधन कैसे होना चाहिए। इससे जब तक कि वो कहते मम उत्तम श्लोक जनेशु सक्यम, हैं हे प्रभु, हैं आपके जो प्रिय मित्र हैं, जो आपके प्रेमी हैं, सब समय स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेम सेवा करते हैं, कहते भ्रमत सकर्म चक्र भी, मैं यदि संसार में कहीं भी भ्रमण करूं, ऐसे प्रियजनों के साथ मेरा संबंध हो। तो आज ग्रंथकार लास्ट में ये कह रहे हैं, नमो राधिका वै तदीय प्रिया वै, मैं राधा जी की वंदना करता हूँ, किसी उनके प्रिय स्वयं श्याम सुंदर कृष्ण हैं, और तदीय प्रिया वै, और जितने उनके तदीय है निजन है उनको प्रिय है। हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि ऐसे प्रेमियों से संबंध हो, प्रेमियों का मैं भजन कर सकूं, उनका अनुगत्य कर सकूं, उनके आश्रय ले सकूं, और सदा सर्वदा मुझे आश्रय दे के रखे, हैं दूर भगाए नहीं। यदि दूर हटा दिया, मैं दूर हट गया, स्वतंत्र हो गया, तो हमारा सब सर्वनाश हो जाएगा। क्यों बुद्धिहीन अज्ञ, क्या मेरा भला होगा, क्या उपकार है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ज्ञान तो है नहीं, सोचते कुछ मिल गया तो बहुत कुछ हो गया, किंतु ये तो सब कुछ नहीं है, आगे तो और कुछ चाहिए। इसलिए कहते हैं श्रवण कीर्तन के द्वारा नित्य लीला का तो नित्य चिन्मय रस इस मिलेगा। इसे वहाँ वर्णन दिया, आनंद चिन्मय रस प्रतिभावी ताभि स्थाभि जो एव निज रूप तया कला भी, वो आनंद जो चिन्मय रस है उसको नित्य श्रवण कीर्तन, तब तो प्रतिभावित ताभि, तब तो वो हाँ हमारे हृदय में प्रतिफलित होगा, स्फूर्ति होगा। आज यदि एक दिन सुन लिया फिर दूसरे दिन याद कर लिया, तीसरे दिन भूल जाएंगे। इससे नित्य प्रति जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं और प्रेमी जनों के साथ रहेंगे तो करेंगे श्रवण कीर्तन, क्योंकि हमारे गुरुवर्गों ने क्या किया, सुबह ब्राह्म मुहूर्त के बाद कथा कीर्तन का व्यवस्था बनाया, त्रिसंध्या व्यवस्था बनाया, वो लोग नित्य स्मरण करते हैं, नित्य स्मरण करने की उपाय कर दिया। और जो अन्यत्र जाएंगे तो क्या है, कभी एक एक टाइम याद कर ली, कभी वो भी भूल जाते हैं, खा जाते हैं हम गोला गोलगप्पा की तरह, सब खा गया तो हजम हो गया, अब क्या जरूरत है, एक दिन कर लिया बहुत है जीवन में, एक दिन तीर्थ स्नान कर लिया, एक दिन नाम जप कर लिया, बहुत है, रोज रोज क्या खटखट खटखट करने की जरूरत क्या है, ये जरूरत नहीं है। किंतु जिसका प्रेम नहीं है, अर्थात भगवान में कोई ममता नहीं है, जहाँ ममता है क्या उसको छोड़ सकते, भूल सकते हैं, वो घर, वो चार दीवारी, वो यार दोस्त, वो पैसा, वो नौकरी चाकरी, क्या उसको भूल सकते हैं। भगवान को एक दिन याद करिए, धाम में आया, वृंदावन आया, एक दिन आया कि बड़ा मुश्किल से रगड़ करके एक महीना रह गया, ओ आ एक महीना कितना कष्ट करे, फिर कहाँ गए, वो खोपड़ी झोपड़ी में, तो झोपड़ी में प्रेम है, खोपड़ी वहाँ ही जाता है, किंतु भगवान में प्रेम नहीं है, दिखावा करने से क्या होगा। इसलिए प्रार्थना करना है, कहते हैं कैसे मेरा नित्य नरंतरजमयी प्रीति मेरे हृदय में आविर्भूत हो, तो कहते हैं और केवल तदीय प्रिया है, तदीय जो जन है भगवान के प्रिय भक्त, तो वही हमारे इंद्रियों के आसक्तियों को हटा करके अपने अपराकृत रसों के द्वारा सिंचन करके मेरे को शिक्षित और सुशिक्षित और योग्य सुयोग्य बना सकते हैं, और किसी के पास सामर्थ्य नहीं है। सब लोग कह सकते हैं मैं मदद करूँगा, किंतु कुछ है ही नहीं तो देगा क्या, एक कपड़ा दे दी, खाना दे दी, रहने को दे दी, इससे थोड़ी ना कुछ होना है, चमड़ी दामड़ी तो रहेगा नहीं, कोई दुनिया में चिरकाल तो रहेगा नहीं, और यदि अभी शरीर में रहते हुए भगवान में प्रीति हो गया तो जहाँ भगवान के नित्य जन है, नित्य लीला है, वहीं हमारे लिए स्थान होगा, प्रभु हमारे लिए याद करेंगे तो हमारा सुगति होगा। ये कहते हैं इससे कृष्ण स्मरण कैसे स्मरण होगा सर्वक्षण। केवल एक ही उपाय है तत्त कथा रतस्यासु, जहाँ पर भगवान कथा सर्वक्षण तस्मिन् मन मुखरित मधुवी चरित्र पीयूष शेष सरित परित श्रवंती ताजे पिबंत विदृश निपगाड़ कर्णई हैं। कहते हैं भगवान के भक्त जन प्रेमी जन सर्वक्षण भगवान की कथाओं का कीर्तन करते हैं। यह नदी का स्रोत है तैयले तो धारा बात अविच्छिन्न गति से बंद नहीं होता। कोई कोई पूछते हैं अरे काल तो कथा सुना आज क्या सुनने जा रहे हैं, वही तो रटेंगे। बोलते हैं ऐसा नहीं, तुम कभी गए नहीं ना, सुना नहीं ना हैं। उनके अथा अनंत कितने उनके कथा भंडारा है हैं, वो समाप्त होने वाला नहीं, अक्षय सरोवर है हैं। वो कथा कैसे कैसे हैं, काल एक सुना तो आज कुछ है, आज सुना तो अभी थोड़ी देर में कुछ और लीला हैं, कैसे कथा है। तो कथा यदि ऐसे तस्मिन मन मुखरित मधुवी चरित भगवान के जो मधुमय लीला समूह है इसको निरंतर पान करे तो भय शोक मोह कहाँ से आएगा। और बोले कि काम क्रोध की बात करते पारे साधक रे, यदि है साधुजनार संग क्या कर लेगा दुनियादारी, उसमें क्या ताकत है। यदि सत्संग हो गया तो और संतों में प्रेम हो गया तो भगवान में प्रेम हो गया तो इसलिए वो स्थान श्रृंगारस का अधिकार अर्थात शोभायमान हो जाता है और श्रृंगार अर्थात उनको सजा दिया जाता है। और हम लोगों ने सुना अभी दामोदर लीला में वो एक भेलनी कुहारिन वो जाती है ब्रज में सड़े हुए फलों को काट छाट करके लेके टोकरी भर के, तो ब्रजवासी कहते हैं अरे भैया काटे छाटे सड़े ने मत लाइयो। तो बोले हमारे पास तो पैसा वैसा है नहीं, कैसे लाऊं, सेठ तो देगा नहीं उधार। बोले काय को चिंता कर रही है, ये ले कितना चाहिए हैं, सोने का मोहर और चांदी क्या चाहिए तुझे, लाइयो अच्छा फल लाइयो हैं, अनार चेरी और अमरूद संतरा सारे फल लेना, क्योंकि ये लोग मथुरा आते नहीं और मथुरा के लोग ब्रज में जाते नहीं हैं। और ये भिखारीन है गरीब है इससे काटे छाटे को फेंक देते हैं सड़े गले, धोधा कर जमुना के पानी में काट छाट करके ले जाती है, तो उनको कोई कुछ बोलते नहीं, कौन सा भी पहरा देते नहीं, उनके चोर भी कुछ बोलते नहीं। अब वो आकर सेठों को बोलते हैं अरे मेरे को अच्छा फल दो, बोले पैसा दे, बोले कितना चाहिए कितना चाहिए बोलो। बोले आज इसको हो क्या गया हैं, ये कहाँ से लाई इतना सारा हैं। दुकानदार बोले अच्छा हमसे ले हमसे ले, और डांट फटकार करके छांट छांट करके बड़े बड़े लेके जाते हैं ब्रज में। तो एक दिन सड़े गले देने की इच्छा हुई तो दूसरे दिन प्रभु ने व्यवस्था कर दी ना अच्छा के लिए, और अच्छा लेके आई तो उसको सोने का जंजीर पहना दी, हाथ में कड़े पहना दी, अच्छे से साड़ियाँ दे दी हैं, और खाने को बड़े से बड़े दे दी। बोले अरे तू इतना सुंदर फल लाए ना, हमारे लाला बड़ा खुश हो जाते हैं, एक चेरी यदि उसको दे देना वो हाथ में लेके नाचने लग जाता है हैं, एक अंगूर दे दिया अनार के दाना निकाल के दिया, हमारे लाला बहुत खुश हो जाते हैं। ब्रज में हल्ला हो गया, कहीं से भी ये आई सारे लूट लेते हैं जल्दी जल्दी, किसी ने अनार ले ली, किसी ने चीकू ले ली, किसी ने संतरा ले ली, लेके कहाँ जाते हैं सब नंद भवन। अरे जसोदे तेरे लाला के नहीं मैं ये फल लाई, देख इसका जूस निकाल करके दे दियो लाला खुश हो जाएंगे। बोले तू ही दे दे, वो कपड़ा अपने अंचल से निचोड़ के लाला के मुंह में डाल देते हैं, वो तो माँ का स्तन भूल जाते हैं और रस से, क्यों उसका प्रेम रस है ना, उसी को तो पान करते हैं, उनके पास फलों की कमी है क्या। आदर परिचर्यायाम यदि आदर बुद्धि है वही किनके सुदामा के हैं भगवान और रुक्मिणी के छप्पन भोग तो खा नहीं रहे हैं सोने के थाली में हैं, देखते नहीं और उसका छीन करके बगल से और कप का चित्रण में बांधे हुए हैं। तो आज ब्रज में प्रेमी लोग जो कुछ ला रहे हैं कितना प्रेम से खा रहे हैं नाच रहे हैं, और वो कुहारिन अब तो सेठानी हो गई धनी मानी राजरानी हो गई, क्यों? रोज दिन एक टोकरी नहीं, अब 50 टोकरी लेके भी चल रही, किंतु कितना ढोके ले जाएगी है? भगवान के लिए इतना करो तो भगवान भूलते नहीं, अल्प सेवा बहु करी माने, किंतु करो तो प्रेम से। अहंकार लेकर के मैं करने वाली हूँ, करने वाला हूँ, धाक जमा के देख ले मैं कैसा हूँ, मैं दुनिया को दिखा के रोकूँगा, करके दिखाऊँगा, ये सब अभिमान अहंकार कोई काम का नहीं है। यदि सच्चे दिल से प्रभु के पुकारे और कुछ भी हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मैं भक्ता प्रदक्षति अपरितम अस्नामी प्रदत्तात्मन, भगवान प्रयत्न के साथ प्रीति के साथ समर्पण करने प्रभु भगवान स्वीकार करते हैं। इसी दामोदर लीला में भगवान को हम कैसे बांध सकते हैं है? इसको दिखाया। यदि प्रेम है प्रेमी को बांध सकते हो सदा के लिए। प्रेम का बंधन ही सबसे बड़ा गांठ बंधन है। और यदि प्रेम नहीं है, साकल में जंजीर में बांध करके यदि रख लोगे ना, तो वो भी तोड़ ताड़ करके भग जाएगा, चिथड़ा पड़ा रहेगा, किंतु वो आत्मा, मन तो पहले ही निकल गया, आत्मा भी निकल के चला जाएगा। ऐसे नहीं बांधा जाता है। गुरु जी को कहते थे, मथुरा मठ छोटा सा है, चार दीवारी, पंखा नहीं, लाइट नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, कुछ नहीं, तो बोलते आपके पास इतने ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी है, हैं क्यों? इनके यहाँ कुछ नहीं, पानी नहीं, खाने को नहीं, बिजली नहीं। बोलते देखो, अरे ये मथुरा नगरी, वृंदावन भी नहीं। बोलते महाराज जी कहते, मेरे एक ब्रह्मचारी का यदि कोई लाख रुपए का लोभ लालच देकर के भी ले जाए तो मैं जानूंगा। उस समय लाख रुपए की बड़ा कीमत था, कोई ले तो जाए हमारे से, क्योंकि महाराज जी ने अपना प्रेम से ब्रह्मचारियों को ब्रह्मचारिणियों को ऐसा प्रभु के चरणों में बांध दिया, ये टस से मस नहीं होता। कभी चार दीवारी से बाहर सड़क में भी नहीं आया, कभी दिखाई नहीं है, निकला ही नहीं। तो ऐसे यदि प्रेमी संत कहीं हो तो वो अपना प्रेम से सेवा करते हैं प्रभु की, और ऐसे प्रेम सेवा प्रदान करते हैं, कराते हैं और उनको बांध देते हैं, तो उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं और कुछ चाहिए नहीं। किंतु साधारण लोग नहीं समझते, कहते हैं जैसे स्वामी प्रभुपाद के लिए कहा, ये विदेश जाकर सबका ब्रेन वॉश कर दी, कोर्ट में मुकदमा दायर कर दी है, बोले इनने हमारे बेटे का ब्रेन वॉश कर दी, हमारे बेटे का ब्रेन वॉश कर दी, पागल बना दी, इसके बाद स्पिरिट है, मिस्टिक पावर है, कोर्ट केस चल गया है। किंतु उससे क्या होगा? ये आत्मा को वो खुराक चाहिए, क्या? मधुबी चरित्र है। वो मधु मिल गया ना तो कौन पिएगा ये खारे पानी और समुद्र का और नाले का? इससे जब तक ऐसे प्रेमी भक्त मिले नहीं और ऐसे प्रेम सेवा का रस पान कराया नहीं है, सेवा में अधिकार दिया नहीं, वो तब तक ही बस दुनिया में नाक रगड़ेगा हाँ, और घूमेगा, तड़पेगा हाँ, कुछ हाथ आएगा नहीं, आखिर में बस जैति मेरे सैति मेरे। इसी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं श्वेतव्रत मुनि, या ऐसा प्रेमियों के संग कहाँ मिले, और सदा सर्वदा वो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, भवाप वर्गो भ्रमतो जदा भवेत जनस्य तय अच्युत सत्संगमो, सत्संगमो जहि तदैव सद्गतो परावर्षे जयते रति। हे भगवान, भवाप वर्ग, भव अपवर्ग, ये संसार में जन्म मरण माला में चक्कर में सारा दुनिया पुनरपि जननम पुनर्मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जानते हैं डेथ कन्फर्म, संसार में भ्रमण कर रहा है, किंतु यदि भाग्य से सत्संग मिल गया तो उनका संसार का अंत हो गया और वो सत सत का जगह में पहुंचा देंगे नित्यकाल के लिए, प्रभु के चरणारविंद में पहुंचा देंगे। इससे कहते हैं कृष्ण मंशा पूर्ति रूप करे आराधने অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে রাধা কৃষ্ণ একাত্মা দুই দেহধরি অনন্য বিলাস রস আস্বাদন করি। কতে কৃষ্ণকে পৃথিবীধান কিলি শ্রীমতী ধারণী জগত মে আবির্ভূত হই হে। হ্যাঁ, শাস্ত্র মে পুরাণ মে সব বর্ণন দেতে হ্যাঁ, রাধা কৃষ্ণ অলগ অলগ নেই হ্যাঁ, একই হ্যাঁ, কিন্তু দো ভাগ মে বিভক্ত করকে ও জীবক হ্যাঁ ভগবৎ সেবা কা রস প্রদান করনে কে লিয়ে শিক্ষা দেনে কে লিয়ে আগে লানে কে লিয়ে হ্যাঁ শ্রীমতী ধারণিকা আর উনকে পরিকর কা জগত মে আবির্ভাব হ্যাঁ। স্ত্রী কথা অনেক আরাধিত অন্যম ভগবান হরিশ্বর জন্ম বিহায় গোবিন্দ প্রীত জামনায়দ্রহ। কেসা প্রীতি হে হ্যাঁ রাধা কি প্রীতি হ্যাঁ স্ত্রী কথে গোবিন্দ সবকু ছোড় করকে উন গোপীয়কে আরাধনাকে দ্বারা সদা প্রসন্ন হে। স্ত্রী আমারে গ্রন্থকার সত্যব্রত মুনি ওর গোস্বামী গুরুবর্গ ইস মহিমা কা ব্যাখ্যা কীর্তন কর রে আমি হামলোক কাল আর আগে শুনেঙ্গে। তো আজ আমি কার্তিক মহিনাকে অন্তিম সময় আয়া তো ইস সময় বহু সাল পেলে এই আনন্দধামে গুরুজিনে হ্যাঁ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা কি ওর উনকো দীক্ষা ইচ্ছা দিয়া ওর হর সাল আকে গুরু পূর্ণিমা ইহাই মানাতে আর ইহাই কবি কবি আকে সৎসঙ্গ আর বহুত আচ্ছা গৌরলীলা কবি কৃষ্ণলীলা শুভে শাম পন্দ্র দিন মাহিনাভর গুরুজি রহতে আর ইহাই এসব লীলায় চলতি বহুত সুন্দর স্থান। তো আজ বার্ষিক উৎসব হে তো অভি সব লোক যায়েঙ্গে ওয়া ভগবান কা বার্ষিক উৎসব শোভাযাত্রা নিকালনা হ্যাঁ হ্যাঁ। তো শোভাযাত্রা 8:30 বাজে নিকলে গা বাস 1 ঘন্টা কা ভ্রমণ করকে উহাই উন লোক ব্যবস্থা করতে সুবে কা নাস্তা দুপুর কা মহাপ্রসাদ ভোগরাগ হ্যাঁ কথা কীর্তন হ্যাঁ আর গুরুজি কি মহিমা আর গুরুজি কি বৈশিষ্ট্য উহা গুরুজি কা ভজন কুটির বি হে আজ বি হে হ্যাঁ। এই আচ্ছা সৌভাগ্য কে বৃন্দাবন মে সবকু তসনস কর দিয়া কিন্তু উনকে আচ্ছা শিষ্য হে যোগ্য হে ইসলি উনকা ভজন কুটির নষ্ট নেই কিয়া আর জেসে কি ভজন কুটির উনকা সবকু বিরাজমান হে। তো অভি আজ থোড়ি দের মে সব লোক জাগর কে গুরুজি কে ভজন কুটির প্রণাম নাম করকে আর ঠাকুরজি কো লেকে শোভাযাত্রা করেঙ্গে আর করকে ফের উহা কথা কীর্তন চলেগা যদি কিছু ইচ্ছা হয় কথা কীর্তন করে আর স্বতন্ত্র হয় সব আমি তো কিছু উপর লাগাম নেই চালা সকতে ন কিছু কা পকড়ি সকতে আম অনুরোধ প্রার্থনা কর সকতে কিউকি যেসব স্থান গৌরমা যেসব স্থান করল ভ্রমণ রঙ্গে সেসব স্থান হেরব আমি প্রণয় ভক্ত সঙ্গে যাহা প্রণয় ভক্ত যাহা যা যে স্থান মে গে উহা উনকা প্রেম প্রণয় উহা পর বিরাজমান হে। ইসে গুরুজি হ্যাঁ উহা হর সাল গুরু পূর্ণিমাতে জরুর মানাতে উহাই রয়েতে 2-3 দিন ইসকে অলাবা বিচ বিচ মে সৎসঙ্গ কথা কীর্তন গুরুজি বলতে থে মে বৃন্দাবন মে এক শান্তি কে জায়গা হে আমার মঠ থা উসকে পেলে রূপ সনাতন কিন্তু কনজেস্টেড হে গুরুজি খুশ নেই হতে বলতে থে কাহা গলি কুচড়ো মে আ গিয়া ফের গোপীনাথ ভবন ভি বনা বহুত কুছ বনা কিন্তু গুরুজি ইহা আকারে বহুত প্রসন্ন হতে এসে আমলোক স্থান ভি দিয়া আপনি চরণকে পাশ মে কেউ ও গলি কুচড়ো মে আর ভিড়ো মে আমলোক ঘুষায় নেই শান্তি কা স্থান দে দিয়া কথা করো কীর্তন করো দর্শন করো ভ্রমণ করো কুছ ভি করো বচ্চে খেলে কুদে মস্তি করে তোড়ে ফোড়ে হ্যাঁ আপনা ঘর হ্যাঁ গুরু কা দরবার হ্যাঁ এসে কই বাহার জায়গা নিন্দা করতে কমপ্লেন করতে হয় তো মেরে পাশ আতা হয় তো মে বলতাম আমার ঘর মে বচ্চে কুছ ভি করে তুমি কে মতলব হে তোমার ঘর মে তো উদম নেই কর রা হে বচ্চে আপনার ঘর মে কে নেই কর সকতা তো ব্রহ্মচারী কা হক হে হ্যাঁ কিন্তু ইয়ে সব লোক বরদাস্ত নেই কর সকতে এসে এসে দুষ্ট লোক কো আশ্রয় দেনা ভি বড়া মুশকিল হে হ্যাঁ উনকো তো ব্রহ্মচারী কা আশ্রমে আনা ভি নেই চাইয়ে উনকে ঘর মে উনকে বাপ বচ্চে কে নেই করতে উদম किंतु ब्रह्मचारी यदि कुछ इधर उधर कर दी बस चारों तरफ ढिंडोरा पिटते हैं, हल्ला करते हैं, चारों तरफ बदनामी करके घूमते हैं। ऐसे कॉर्पोरेट और क्रिमिनल को भगवान भी सजा देते हैं। कैसे पता है? जो हम लोग नहीं, एक होता है हेल, एक होता है हेल स्प्लेंट है, तो ना जाने कहाँ उनके लिए गति होगी। यदि ब्रज में कृष्ण उद्यम करते हैं है, तो जसनंद माता क्या करेगी है? क्या ब्रजदेविया महाप्रभु उद्यम कर रहे हैं और सब ब्राह्मण आकर के बोल दिया माँ पिताजी को गजाननाथ मिश्र को, तुम्हारे बेटा देखो राजकुमार से भी ज़्यादा उद्यम करने वाला हो गया, तो इनको शासन करो नहीं तो बिगड़ जाएगा। तो डांडा लेली हाथ में मारने के लिए, बोले मारो मत, मारना नहीं। तो बोले आप लोग शिकायत कर रहे हैं, बोले मारना नहीं, मारने से सुधरता नहीं, उसको प्रेम से समझाओ, प्यार करना सीखो जिससे कि सुधर जाए। जिसको प्यार नहीं मिलता है ना वही उद्यम करता है, है? देखो ब्राह्मण का हृदय कैसा है, सरल है। और जगन्नाथ जी से कह रहे हैं मारना पीटना नहीं, गाली गलौज करना नहीं, बिगड़ जाएगा। इतना प्रेम करो, इतना समझाओ, इतना लड़ लड़ाओ जिससे सदा के लिए भूल जाए और बाहर जाए ही नहीं, उद्यम करे ही नहीं। तो बच्चे अपने घर में क्या नहीं करता है? इससे इन बातों को यदि कोई दुनिया देखता है, अरे ये साधु ये क्या हुआ, तो आत्मा तो प्रभु का ही नित्य अंश विभिन्न अंश है। तो प्रभु के पास में रहेंगे तो झगड़ा भी करेंगे, मरेंगे भी, लड़ेंगे भी, पीटेंगे भी, जो कुछ करेंगे है, और उनका अधिकार है। इसलिए जो कॉर्पोरेट क्रिमिनल कहीं घुस गया, घुसपैठी और चारों तरफ घूमते हैं, उनका काम ही है भजन तो करेंगे नहीं, बदनामी करना। ऐसे दुष्टों का शक्ल देखना तो दूर रहे, शायद ये अगले जन्म में उल्लू होकर जन्म लेंगी, उनका आँख नहीं रहेगा और दिन में दिखेगा नहीं, बैठा रहेगा खोडरे में और रात भर घूमते रहेंगे पिशाच की तरह। इनके ऐसे ही गति होती है, आने तो लोमड़ी बनेंगे, हुआ हुआ करेंगे हैं और क्या करेंगे। इसलिए भाई कहा ना करनिंदा कृष्ण कृष्ण बोले अजय चैतन्य से जीने बे खेले हैं। गलतियाँ अच्छा बुराई सबके अंदर है, कोई इंसान धोए हुए गंगा जल और दूध से नहीं हैं पवित्र होते हैं। मन पवित्र होने में टाइम लगता है, यदि सुजोग नहीं मिले आगे बढ़ेगा नहीं। स्कूल के बच्चे जाता है एक दिन में ही पीएचडी डिलीट नहीं करता है। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को देख करके निंदा चर्चा में पड़े रहने वाले व्यक्ति हैं वो भंग की तरह है, खाली गंदगी इकट्ठा करते हैं, टोकरी भरते हैं, उसको लेकर के फेंकते हैं, उनका यही काम हो जाता है चिरकाल के लिए। जो एक बार निंदा चुगली करने लग गया उनका जीवन भर यही काम रहेगा, यही करेगा, भजन तजन नहीं करेगा, साधु दर्शन नहीं होगा, भक्ति मार्ग में नहीं आ सकता। इसे सावधान, साधु सावधान, फिर करी करो अवधान हैं। तो अभी सब लोग तैयार होके अभी जाएंगे, कीर्तन तन करके नगर शोभा करके फिर आएंगे। प्रसाद चाहे वहाँ पाओ यहाँ पाओ, हमें मना नहीं है, क्योंकि आपका स्वतंत्रता है, आपका घर है। गौर प्रेमानंदी।